इशिका अभिमन्यु और क्रिस्टल हॉस्पिटल के कमरे में थे। इशिका ने क्रिस्टल को बताया कि आशीष का असली कातिल उसका खुद का बेटा माहिर है, लेकिन ये साजिश अकेले माहिर की नहीं हो सकती, जरूर आयशा इसमें शामिल है। आयशा ने आशीष को इसलिए मारा था क्योंकि वो उसका एक राज जानता था। अब उस राज के बारे में माहिर को भी पता था, तो उनके हिसाब से हो सकता है कि आयशा का अगला निशाना माहिर हो। क्रिस्टल यही चाहती थी कि जल्द से जल्द असली कातिल यानी माहिर को अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन इशिका ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। वो आयशा को इस बार बचकर जाने नहीं देना चाहती थी। क्रिस्टल ने इशिका की फ़िक्र जताते हुए कहा, तुम्हारा प्लान काफ़ी अच्छा है, पर लोग तुम्हारे बारे में बहुत भला बुरा कह रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, उल्टा इसमें हमारा ही फ़ायदा है। इन सब की कॉमेंट्स और न्यूज़ से आयशा को यही लगेगा कि मैं गुनहगार साबित हो गई हूँ, और इस चक्कर में वो कोई गलती ज़रूर करेगी, इशिका ने जवाब दिया। इशिका काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, उसका चेहरा भी शांत था, तो क्रिस्टल ने सारा मामला उस पर छोड़ दिया। अब वो इशिका को गलत नहीं समझती थी और उसके हिसाब से इशिका बेगुनाह भी थी। क्रिस्टल ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, इशिका मुझे तुम्हें बता देना चाहिए कि आशीष ने तुम्हारे लिए क्या वॉइस नोट छोड़ा था। उसने क्रिस्टल उसे पूरी बात बताती उससे पहले इशिका ने उसकी बात काटते हुए जल्दी से कहा, कुछ मत कहो, तुम अपने काम को लेकर बहुत ऑनेस्ट हो, तो आगे भी रहो, दोस्ती के चक्कर में अपने काम के साथ दगाबाजी मत करो। इशिका ने उसे पूरी बात बताने से पहले ही रोक लिया था। उसके रोकने पर क्रिस्टल रुक गई, फिर उसने हल्का सा खांसा और धीरे से कहा, एक्चुअली मैं चाहती तो तुम्हें उस रिकॉर्डिंग के बारे में पहले भी बता सकती थी, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं था, ये केस से जुड़ा हुआ नहीं है, मैं बस तुम्हें परेशान करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। इशिका ने क्रिस्टल की तरफ घूर कर देखा, फिर उसने भौहें चढ़ाकर कहा, ठीक है फिर बता दो। क्रिस्टल ने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, उसके आखिरी शब्द थे कि माहिर को भी सच्चाई का पता है, तुम्हें उसकी ट्यूशन फीस भरनी होगी और साथ ही यूनिवर्सिटी फीस भी। क्रिस्टल के सब कुछ बताते ही कुछ पल के लिए वहां बिल्कुल शांति छा गई। इशिका ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे पहले ही पता था कि वो मुझे ये सीक्रेट कभी नहीं बेचने वाला है। जब मैं उसे 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार थी, तो फिर उसने सिर्फ ट्यूशन फीस की बात क्यों की? ज़रूर वो मुझे वो सीक्रेट बेचने ही नहीं वाला था। अफसोस हो रहा है कि मैं उसकी बातों में आ गई। इशिका ने जानबूझकर माहिर पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, वरना वो इस वक्त गुनहगार साबित हो जाता। इशिका ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर वो तब माहिर को पकड़ाती तो शायद वो असली मास्टरमाइंड तक कभी नहीं पहुँच पाती। पूरी प्लानिंग सुनने के बाद भी क्रिस्टल थोड़ी परेशान थी। उसने इशिका से कहा, देखो तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है, अगर माहिर ने अपना फ़ोन तोड़ दिया या उसे कहीं फेंक दिया तो हम कभी उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसे में तुम प्रॉब्लम में आ सकती हो। इशिका ने तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, पुलिस के आने के तुरंत बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया था और उस वक्त उसने ज़्यादा नहीं सोचा। अगर सच में माहिर ने अपना फ़ोन फेंक कर नया फ़ोन ले लिया तो इशिका के लिए खुद को बेगुनाह साबित करना मुश्किल होने वाला था। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उन्हें परेशान देखकर अभिमन्यु ने कहा, आप लोगों का डाउट बिल्कुल ठीक है, उसने अपना फ़ोन फेंक दिया था, लेकिन उसका मोबाइल अब मेरे पास है, मेरे किसी आदमी ने उसे उठा लिया था। अभिमन्यु का प्रेजेंस ऑफ माइंड और तुरंत डिसीजन लेने की खासियत से इशिका बहुत इम्प्रेस हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, वेल डन मिस्टर राजवंश, आपने सच में बहुत अच्छा काम किया। इतने सालों में अभिमन्यु ने काफ़ी बार अपनी तारीफ सुनी थी, लेकिन आज इशिका के मुँह से अपनी तारीफ सुनकर उसके गाल लाल होने लगे। उसने इधर उधर देखा और हल्का सा मुस्कुराकर कहा, आप मुझे बटरिंग करने की कोशिश कर रही हैं मिस सिंघानिया? हो सकता है मिस्टर राजवंश, इशिका ने बेपरवाही से कंधे उचकाकर कहा। उन दोनों का रिश्ता भले ही बाकी कपल्स जितना गहरा या खास ना हो, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। इशिका और अभिमन्यु एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, तभी क्रिस्टल ने सिर हिलाकर कहा, आप दोनों शादीशुदा हो, फिर एक दूसरे को मिस सिंघानिया और मिस्टर राजवंश कहकर क्यों बुला रहे हो? पहले मुझे लगा था कि आप दोनों का रिश्ता गहरा नहीं है, पर अब लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो और प्यार जताने का ये तरीका भी अलग है। क्रिस्टल की बात सुनकर अभिमन्यु और इशिका चुप हो गए। इशिका ने महसूस किया कि वो ब्लश कर रही है। उसने तुरंत ही खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, तो वहीं अभिमन्यु भी इधर उधर देखकर इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ इशिका से मिलकर आने के बाद माहिर अपने रूम में गया। उसने अपने रूममेट्स को पैसे दिए, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उनमें से एक लड़के ने कहा, हमें तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे समझ लेंगे जैसे हमारे पैसे रोड पर गिर गए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे डैड को मारने वाली लड़की के साथ तुम डील करके पैसे ले रहे हो ताकि केस को दबाया जा सके। प्रिंस की वजह से वो वीडियो वायरल हो गया था जिसमें माहिर दिशांक से पैसे ले रहा था और वो हॉस्पिटल रूम में था। माहिर ने तुरंत अपनी सफाई देते हुए कहा, मैंने उससे वो पैसे उधार लिए हैं, मैं उसे वापस कर दूंगा। उसने उन्हें जानबूझकर नहीं मारा है और मैंने कोई डील नहीं की है। तुम लोग चाहे तो पुलिस स्टेशन में जाकर पता कर सकते हो। माहिर उनसे बात कर रहा था तभी उनके एक रूममेट ने उसके हाथ से पैसे छीनते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, अगर उधार लिए हैं तो रख लेते हैं। हम लोग बाहर जा रहे हैं, कमरे का ध्यान रखना और हमसे दूर ही रहना, कहीं तुम्हारी वजह से रिपोर्टर्स हमारे पीछे ना लग जाए। माहिर को भला बुरा सुनाने के बाद उसके रूममेट्स वहां से जा चुके थे। माहिर को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था, उसका कोई नहीं था। कुछ देर इधर उधर टहलने के बाद उसने आयशा को कॉल किया। आयशा ने कॉल उठाकर काफी प्यार से कहा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? माहिर ठीक नहीं था तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। आयशा उसकी हालत समझ सकती थी, इसलिए उसने माहिर को समझाते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, लोग काफी भला बुरा कह रहे हैं तुम्हें, लेकिन इसमें भी हमारा ही फायदा है। इससे जल्द से जल्द ऋषिका को सजा होगी और हम इस मामले से बाहर आ जाएंगे। माहिर ने सिर हिलाकर कहा। माहिर काफी अपसेट साउंड कर रहा था। आयशा ने कहा, देखो माहिर, तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। कुछ दिन लोग बातें बनाएंगे, उसके बाद ये भी भूल जाएंगे। अगर तुमने ऐसे ही बिहेव किया तो लोगों को तुम पर शक हो जाएगा और तुम पकड़े गए तो फिर मेरा क्या होगा। आयशा की बातों से माहिर को कुछ तसल्ली मिली। वैसे तो माहिर को लोगों की बुरी बातें सुनने की आदत थी, क्योंकि आशीष एक अच्छा आदमी नहीं था। ऐसे में सिर्फ आयशा ही थी जो उसकी परवाह करती थी और उससे ठीक तरीके से बात करती थी। आयशा ने उसकी बहुत मदद की थी, वो उसे खाना लाकर देती थी और उसकी फीस वगैरह में भी मदद की थी। जब आयशा ने माहिर को बताया कि आशीष ने उसे 1 करोड़ रुपए मांगे हैं और ब्लैकमेल करा रहा है, तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। आशीष से गुस्सा होकर ही माहिर ने उसे पीछा छुड़ाने के लिए उसे मारने का और सारा इल्जाम इशिका पर डालने का प्लान बनाया था। आयशा के साथ अपने रिश्ते से अनजान माहिर उससे प्यार करता था। माहिर ने गहरी सांस ली और आयशा से कहा, आयशा मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे बता दो कि हमें कब होने वाले हैं। जल्द ही माहिर, तुम्हें पता है राजवंश फैमिली मुझसे सगाई तोड़ने जा रहा है, उसके बाद मैं मॉम डैड से बात करूंगी और फिर उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगी। आयशा ने आईज रोल करके कहा। वो चेहरे से काफी इरिटेटेड लग रही थी लेकिन माहिर से प्यार से बात कर रही थी।
क्या सच में? माहिर ने हल्का मुस्कुरा कर कहा। आयशा आई एम रियली मिसिंग यू, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो प्लीज? मैं अभी बिजी हूँ माहिर, आयशा ने जवाब दिया। आयशा ने इनडायरेक्टली आने से मना कर दिया था। माहिर ने अपने खाली कमरे की तरफ देखा तो उसे अकेलेपन का एहसास हुआ। उसने सर्द आवाज में कहा, मुझसे ज्यादा भी कोई जरूरी काम हो सकता है तुम्हारे लिए? आयशा, मरने से पहले डैड ने मुझे सब बता दिया था, वो राज जो तुम्हारे और उनके बीच में था। इस बीच इशिका और अभिमन्यु उन दोनों की पूरी बातचीत को सुन पा रहे थे। इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कहा कि सच में आशीष ने मरने से पहले माहिर को सब बताया था। आगे सुनते हैं, अभिमन्यु बोला। उन्होंने फिर से उनकी कॉल सुननी शुरू कर दी थी। वहीं माहिर की बात सुनकर आयशा गुस्सा हो गई। वो अपना गुस्सा काबू करके बोली, माहिर बकवास करना बंद करो, तुम्हारे और मेरे डैड के बीच में कौन सा राज हो सकता है? मुझे सब पता है उस राज के बारे में, वो तुम्हारे और इशिका के बारे में है, माहिर ने झट से जवाब दिया। आयशा सब जानती थी, फिर भी उसने अनजान बनने का दिखावा करते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन से राज की बात कर रहे हो, लेकिन मेरे और इशिका के बीच में कोई राज नहीं है। वहीं इशिका बेताब होकर सुन रही थी, वो भी जानना चाहती थी कि आखिर कौन सा राज था जिसके दम पर आशीष ने इतने सालों तक आयशा से पैसे ऐंठे थे। माहिर ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं यहां उस राज के बारे में जिक्र करूं? किसी ने सुन लिया तो? उसकी बातें सुनकर आयशा के चेहरे पर घबराहट से पसीने की बूंदें आ गई थीं। उसने खुद को नॉर्मल करके नर्म आवाज में कहा, मैं सच में बिजी हूं माहिर, इस वक्त मैं मॉम के साथ हॉस्पिटल इशिका से मिलने के लिए जा रही हूँ। मैं उन्हें कहूंगी कि वो इशिका पर थोड़ा प्रेशर डाले ताकि वो इस गुनाह को अपने सिर ले ले। जब ये सब में पट जाएगा तब मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। ठीक है, फिर आज रात मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, कहकर माहिर ने कॉल काट दिया था। इशिका ने गहरी सांस ली, उसे काफी अजीब लग रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि माहिर और आयशा के बीच ऐसा रिश्ता भी हो सकता था। आयशा उम्र में उससे बड़ी थी। इशिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी तभी उसके कानों में अभिमन्यु की आवाज़ पड़ी। अभिमन्यु खिड़की के पास खड़ा था, उसने इशिका से कहा, मिसेस सिंघानिया यहाँ आई हैं। वैसे भी आयशा ने इस बारे में कॉल पर भी जिक्र किया था। मिसेस सिंघानिया के आने की बात सुनकर इशिका अपने दोनों गालों को जोर जोर से थपथपाने लगी ताकि वो लाल हो जाएं। वो राधिका को परेशान नहीं करना चाहती थी। खून की कमी होने की वजह से वैसे भी उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। अभिमन्यु ने उसे ऐसा करते देखा तो भौहें चढ़ाकर कहा, तो आपको डर है कि मिसेस सिंघानिया आपको इस तरह देखकर परेशान हो जाएगी? इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी और जल्दी से बाथरूम में चली गई। उसने अपना हॉस्पिटल ड्रेस बदलकर दूसरा पहन लिया था और चेहरा भी साफ किया। जल्दी जल्दी में इशिका ने अपने बालों की पिकटेल बनाई थी, हालांकि उसके कुछ बाल अभी भी उसके चेहरे पर आ रहे थे। वो खुद को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। फ्रेश होने के बाद इशिका बाहर निकली। वो बेड पर जाकर वापस लेट गई थी। इस बीच आदर्श, राधिका और आयशा हॉस्पिटल रूम में पहुंचे। इशिका को ठीक देखकर राधिका ने राहत की सांस ली और उसके पास आकर कहा, तुम तो अब मुझे ठीक लग रही हो, तुम इसके बारे में मुझे कब बताने वाली थी? इतना सब कुछ हो गया, न्यूज नहीं आती तो कुछ पता ही नहीं चलता। वो उसे काफी प्यार से डांट रही थी। राधिका का प्यार देखकर इशिका को दिल ही दिल में बहुत अच्छा महसूस हुआ। वो जवाब देती उससे पहले आदर्श ने उसे ताना मारते हुए कहा, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, जैसे कि इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, इसने जमानत पाने के लिए ये सब दिखावा किया। आदर्श की बातें सुनकर इशिका की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। इशिका को उदास देखकर राधिका ने उसका हाथ पकड़कर सहलाया और आदर्श को सख्ती से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, इशिका ऐसी बच्ची नहीं है। उसके बाद राधिका ने इशिका की तरफ देखकर प्यार से कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अनीमिया है। घर से निकलने के बाद तुमने बहुत काम किया था क्या, जिसकी वजह से तुम्हें ये बीमारी हो गई? लगता है तुमने ठीक से खाना पीना नहीं किया। आदर्श ने सिर हिलाकर कहा, तुम ना बहुत जल्दी सबकी बातों में आ जाती हो राधिका, हमने हर महीने इसके रहने खाने के अच्छे खासे पैसे भेजे हैं, फिर ये बीमार कैसे हो सकती है? उनकी बातें सुनकर इशिका ने हैरानी से कहा, आपने हर महीने मुझे पैसे भेजे थे लेकिन मुझे कभी कोई पैसे नहीं मिले हैं। देखा राधिका, ये फिर से झूठ बोल रही है, इसने कहा कि उसे कोई पैसे नहीं मिले, तो अब तक ये अपना गुजारा कैसे कर रही थी? इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में जा रही है, उसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते, इसको स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही है, फिर कैसे ये सब कुछ मैनेज कर रही है? आदर्श ने सिर हिलाकर कहा। हर बार की तरह आदर्श राधिका के सामने इशिका को नीचा दिखाने चाहते थे। इशिका भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने सख्ती से कहा, आप चाहो तो मेरे बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, इतने सालों में मैंने आपसे एक रुपया भी नहीं लिया है। इस बार तो आदर्श भी चौंक गया था। उसने खुद इशिका के लिए हर महीने भेजने के लिए एक रकम तय की थी, फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि इशिका को आज तक कुछ नहीं मिला था? राधिका ने आयशा की तरफ देखा और कहा, आयशा मैंने ये जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, क्या तुमने हर महीने उसे पैसे नहीं भेजे? आयशा ने कभी इशिका तक पैसे नहीं पहुंचाए थे। उसके चेहरे पर घबराहट थी क्योंकि उसका झूठ पकड़ा गया था, लेकिन उसने खुद को नॉर्मल दिखाकर कहा, मॉम इसमें मेरी कोई हलती नहीं है, मैंने मालविका आंटी को हर महीने पैसे दिए थे, इसकी माँ ने ही इस तक पैसे नहीं पहुंचाए हैं, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इशिका ने नफरत भरी निगाहों से आयशा की तरफ देखा। वो काफी चालबाज थी और यहाँ समझ आ रहा था कि कैसे उसने कितनी सफाई से सारा इल्जाम मालविका पर डाल दिया था। इशिका ने आयशा की तरफ देखकर अपने मन में कहा, तुम्हें जितने झूठ बोलना है तुम बोल लो आयशा, लेकिन बस कुछ दिन और, हर एक राज पर से पर्दा उठेगा और तुम बेनकाब हो जाओगी। उस दिन देखती हूँ कि तुम किसके ऊपर अपने झूठ का बोझ डालती हो।